कहना है रहना है, घर माँ सुरक्षित रहना है, लड़ना है लड़ना है, सब जनला मिलके लड़ना है।
यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से अरपार रेडियो की प्रस्तुति स्वास्थ्य संकल्प।
मुश्किल घड़ी है संगवारी, जन जन के अब जिम्मेदारी।
जीवन है अनमोल, कर ले स्वस्थ रहने का संकल्प। देते रहेंगे मंत्र हम करने को कायाकल्प।
जन जन के साथ है ता फिर आए खुशहाली।
स्वास्थ्य संकल्प
भारत मुस्कुराए, छत्तीसगढ़ मुस्कुराए।
यूनिसेफ, कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 ये कामना करता है कि हर व्यक्ति हो स्वस्थ। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। बच्चे सभी को अच्छे लगते हैं। कहा जाता है कि बच्चे ईश्वर की मर्जी से धरती पर आते हैं, लेकिन बच्चे के माता पिता जब तक शारीरिक, मानसिक व आर्थिक रूप से तैयार न हो, तब तक क्या स्वस्थ बच्चे पैदा हो सकते हैं? माँ बाप बनना एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है, लेकिन जरा आप खुद सोचिए, अस्वस्थ, चिड़चिड़ा, कुपोषित, रोने वाला, बीमार से बच्चे के माँ बाप कहलाना क्या कोई भी पसंद करेगा? नहीं ना। जब तक माँ स्वस्थ नहीं होगी, अच्छा खान पान नहीं लेगी, गर्भावस्था से पहले, गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के पश्चात सावधानी पूर्वक नहीं रहेगी, तब तक वो स्वस्थ बच्चे की माँ नहीं बन सकती।
मैना, ए मैना, कहाँ हसो?
कहाँ हो ही, सुते हो ही, ए खटिया ले ओ खटिया, बस एक काम हवे ओखर।
मैना, का होगे? कैसे, कुछ रांधे नहीं है? खेत खार ले बूता करके आथन तो खाना खाथन, पता नहीं है का तोला?
अब्बड़ थकासी लगत रही से, सांस भीतर बाहर होत रही से, खड़े हैं तो चक्कर आगे।
सांस भीतर बाहर नहीं हो ही, तो का हो ही?
नहीं दाई, सांस रुकत रही से।
काली ना, मितानी ना मिले रही, पूछत रही से कि काबर अतका दिन हो गए, मैना ला अस्पताल मा जांच करा बर काबर नहीं लाया भाई?
का कहे, जांच बर? अब भी तो 4-5 महीने चढ़े है, जांच के का जरूरत है? हमार तो 4-6 जन लड़का हो गए है, हमन तो एक को घा अस्पताल के मुंह नहीं देखे हन। ए मितानिन सितानिन के एक का जुबा करे बर जावत हो, कोनो जरूरत नहीं है।
नहीं दाई, जांच ना अब बड़ जरूरी हवे।
मैना हा पेट से है, एती ओती निकल ही तो कोनो नजर फेर दे ही तो हो गए।
रुक जा दाई, मैं रांधत हो।
अरे बचिस बचिस, ए दे, अब बीचे गिर जातीस।
अरे अपन नहीं तो जिन लड़का होवैया है ओखर तो ध्यान रख।
दाई दाई ते ही मेरे बैठ, ये ना खड़े नहीं हो पावत है, मैं मितानी ले बुला के लाता दाई। मितानी दीदी, मोर मेहरालू ना अब्बड़ चक्कर आवत है, थोड़कीन चार के देखना है वो। चल चलना दीदी, चलना।
कतका महीना के बच्चा हवे पेट मा?
4 महीना दीदी।
4 महीना हो के अभी तक जांच नहीं करवाए हो?
गलती हो गई दीदी, नहीं कराए हो। थोड़कन थोड़कन जल्दी चलना दीदी, वो खड़े नहीं हो पावत है।
एमा तो खून की कमी लगत है मोला, सांस भी फूलत है, एनीमिक लगत है। एला खून के जांच और दूसर जांच बर तेना काली अस्पताल जरूर पहुंचा। ते जाओ पहली नींबू लेके आ और ओखर शरबत बना के ना एला पिला।
इस नाटिका में स्वर थे नम्रता वाजपेयी, श्वेता पांडे और अनीश श्रीवास के। जैसे ही महावारी रुकती है, गर्भ ठहरता है, महिला को डॉक्टर के पास जाना, जांच करवाना कितना जरूरी होता है आपको पता है? 9 महीने में कितनी बार जांच होनी चाहिए? सोनोग्राफी क्या हर महिला के लिए जरूरी होती है? 9 महीने में कौन कौन से टीके कब कब लगने हैं, क्या खाना है, क्या नहीं करना है, ये सब न करवाने से बच्चे को और माता को कितने नुकसान हो सकते हैं, ये सब जानकारियाँ सिर्फ गर्भवती महिला को ही नहीं बल्कि परिवार के सदस्यों को भी ध्यान में रखनी चाहिए। आखिर नया मेहमान पूरे परिवार का सदस्य बनने वाला होता है, और इन्हीं सब जानकारियों के साथ आज हमारे साथ हैं जन स्वास्थ्य केंद्र गनियारी में लंबे समय से मातृत्व एवं महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम से जुड़ी कार्यकर्ता मंजू ठाकुर। मंजू जी, पहली तो हमें ये बताओ कि प्रसव पूर्व जांच काबर के जरूरी है?
माँ के गर्भ में एक बच्चा है, अब दो ठो शरीर एक साथ पलत है, तो वो दौरान माँ कुछ ऐसे परेशानी मत हो जाए जेकर से माँ और बच्चा के जान में खतरा हो जाए। तो जांच में का है कि पहले ले पता चल जाते कि जचकी के टाइम में कोई परेशानी तो नहीं होने वाला है, बहुत ज़्यादा खून की कमी तो नहीं है, माल और जो भी दिक्कत रही थी ओखर समय में पता चल पाते, खर लिए प्रसव पूर्व जांच बहुत जरूरी है।
9 महीना में कतका बार जांच होना जरूरी है?
वैसे तो कम से कम 4 बार जांच होना चाहिए पूरा 9 महीना में। अगर आसपास में जांच की सुविधा है तो मोर ख्याल से हर महीना में जांच कराए में और भी ज़्यादा बेहतर है। और कहीं ऐसे परेशानी है कि दूर है अस्पताल या जाँच करैया मुश्किल से मिल पाते, तो लेकिन गर्भावस्था के आखिरी के 3 महीना में, 7वां, 8वां, 9वां महीना में 3 बार जांच बहुत जरूरी है।
और ये जांच में का शामिल होते?
जांच में तो इसे बहुत सारा चीज शामिल होते, जैसे कि गर्भवती महिला के ऊंचाई के जांच करथन, वजन जांच करथन, खून पेशाब के जांच करथन, पेट के जांच करथन, और कई ठो परेशानी रहते जिन ला खुद महिला बोल के बताते, तो फिर ओखर हिसाब से फिर अलग अलग जांच और होते। जैसे कि पेशाब के जांच होते, जांच में तो पेशाब के जांच में हमन पेशाब में प्रोटीन देखथन कि पेशाब में सफ़ेदी तो नहीं है। एक ठन जांच और होते, कोई महिला ला कोथा में दर्द होते या फिर पेशाब में जलन होते, तो ओखर एक ठो जांच होते जिनमें पेशाब में संक्रमण तो नहीं है, एक हर बार हमन जाँच करथन। और पेशाब में शुगर के भी जाँच कराना बहुत जरूरी है।
मंजू जी, अगर जांच में एक बार सब चीज सही आ गए तो काबर के बार बार जांच की जरूरत पड़ते?
एक बार जांच में अगर सब चीज सही सही आ गए तो उतका टाइम पर तो हम निश्चिंत हो सकत हैं कि अभी सही है, लेकिन कहे नहीं जाए, काबर के गर्भावस्था ऐसे समय है कि वो गर्भवती महिला ला कभी भी कोई भी परेशानी सामने आ सकत है, एकर लिए बार बार जांच बहुत ज्यादा जरूरी है।
मंजू जी, हमारे श्रोता बहिनी मन ला यही बता कि 9 महीना के दौरान कौन कौन से टीका लगाए जाते हैं और कब कब?
पूरा 9 महीना के गर्भावस्था में टेटनेस के 2 टीका लगवाना जरूरी है। गर्भावस्था के 3 महीना पूरा होए के बाद पहला टीका लगाया जाते, ओखर बाद दूसरा टीका है 1 महीना के बाद लगाना है।
गर्भावस्था में का करे चाहिए और का नहीं करे चाहिए, एहू ला बता।
गर्भावस्था ऐसे समय होते जिनमें ना बहुत ज्यादा सावधानी रखे की जरूरत पड़ते। हो सके तो गर्भावस्था में भारी काम, जिनमें ज्यादा वजनदार वजन उठाए वाला काम है और जिन काम ला करे में परेशानी होते, ऐसे काम ला नहीं करना चाहिए। घर के हल्का काम, जो भी हल्का काम है, झाड़ू लगाना, खाना बनाना, ये सब काम ला कर सके, जैसे कि जंगल ले लकड़ी बो के लाते, पानी भरते, कपड़ा बड़े बड़े मोटा मोटा कपड़ा धोते, ये सारा चीज ला नहीं करना चाहिए।
गर्भावस्था में क्या करें क्या न करें, कब कौन सा टीका लगवाएं, कब आयरन की गोली खाएं, कब कब जांच कराएं, सब कुछ अभी आपने विस्तार से जाना। पिछले कुछ दिनों से लगातार आ रही कोरोना की खबरें कि मामले बढ़ रहे हैं सुनने में आ रही हैं। अभी पूरी तरह से गया नहीं है कोरोना, इनसे बचने के लिए बहुत लापरवाही हो रही है हर तरफ, ना मास्क ना 2 गज की दूरी, बस भरी भीड़ में त्योहारों की शॉपिंग। पिछले साल भी त्योहारों के वक्त ही हुई थी लापरवाही और हमने अपने कई नज़दीकी लोगों को कोरोना का ग्रास बनते देखा था, याद है ना? फिर अभी लापरवाही क्यों? घर से निकलते वक्त मास्क लगा कर रखने में क्या परेशानी है भला? खुद रहिए सुरक्षित, परिवार को रखिए सुरक्षित। मास्क के साथ 2 गज की दूरी भी रखना बहुत ज़रूरी है, वरना कोरोना वायरस का फोन आ जाएगा आपके पास। वैशाली के पास तो आ भी गया है अभी। सुनिए क्या बात हो रही है वैशाली की कोरोना वायरस के साथ।
जी नमस्ते, मैं कोरोना वायरस बोल रहा हूँ।
हाँ जी बोलिए।
जी कैसे हैं आप?
I'm good।
जी मैं आपके पास नहीं आना चाहता इसलिए मैंने कॉल किया आपको।
जी बिल्कुल, हम चाहते भी नहीं आप आए। यू आर नॉट वेलकम ओवर हियर।
जी जी, तो मैं नहीं आऊँ इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
फॉर द फर्स्ट फ्लाइट बैक होम फ्रॉम पुणे टू माय फैमिली जस्ट बिकॉज ऑफ यू. माय ऑफिस इज शट डाउन जस्ट बिकॉज ऑफ यू. आई एम स्टेइंग विद माय फैमिली. मेरे को टाइम मिल रहा है अपने परिवार के साथ, बट ऐसा टाइम किसी को नहीं चाहिए रहता है.
तो आप इसके लिए मुझे थैंक यू बोल सकती हैं?
नहीं, मुझे आपको थैंक यू नहीं बोलना है. मैं चाहती हूँ कि आप इस देश से, इस दुनिया से निकल जाए.
मैं भी जाना चाहता हूँ
जी.
पर ये तो आप पे डिपेंड करता है, आप सब पे डिपेंड करता है
जी. मैं जब आ रही थी तो मेरे अंदर खौफ था. मैं मास्क लगा के आई, मैं सैनिटाइजर लगा के आई, पूरा टाइम सैनिटाइजर यूज करा मैंने, दो दो मास्क लगा के आई सिर्फ आपके कारण. मैं चाहती हूँ कि आप जाएं, और लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं उन चीजों को.
हाँ, ऐसा अगर हुआ तो फिर तो मैं चला जाऊंगा.
तो बस लोग फॉलो कर रहे हैं, उसीलिए फॉलो कर रहे हैं कि आप वापस चले जाएं.
तो और क्या क्या कर रहे हैं आप?
घर की साफ सफाई मेंटेन कर रहे हैं हम, लोगों से मिल नहीं रहे हैं हम, हमने लोगों से मिलना बंद कर दिया, लोगों को अपने घर बुलाना बंद कर दिया है. हर टाइम हाथ धोना, हर टाइम लोगों को बताना.
ये तो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, थोड़े कुछ काम और कर लीजिए.
क्या काम?
आप जो अफवाहें उड़ रही हैं उन पे ध्यान न दें और उन अफवाहों को
फैलाएं. हम नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम जो गवर्नमेंट ने साइट बनाई हुई है covidout.in सिर्फ उसी को फॉलो कर रहे हैं.
वेरी गुड, वेरी गुड.
अपने साथ साथ हम दूसरों को भी उसके बारे में बता रहे हैं, लोगों को जागरूक करा रहे हैं.
बस मैं तो यही चाहता हूँ आप लोग लोगों को जागरूक करें और मैं यहाँ से चला जाऊँ. मैं तो खुद आपके पास नहीं आना चाहता.
जी 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 जी.
हेलो.
हाँ जी.
हम तो फंस गए.
जी, आप ही फंस गए. और कुछ आप सुनना चाहेंगे आपके बारे में?
हाँ हाँ, बताइए बताइए.
नहीं नहीं, हमने आप बहुत सुना दिया, अब आप वापस जा सकते हैं.
बिल्कुल, हम जा सकते हैं. थैंक यू वैशाली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए. हम अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 से बोल रहे हैं, और अरपा कम्युनिटी रेडियो ये तो अरपा कम्युनिटी रेडियो दुआ करता है कि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे, जबरदस्त रहे. थैंक यू सो मच.
थैंक यू सो मच.
माँ का दूध अमृत तुल्य होता है. हर माँ को 6 महीने तक स्तनपान करवाना ही चाहिए. ये सब बातें तो कही जाती हैं, लेकिन यदि कोई माँ कोरोना संक्रमित है तो क्या उसको स्तनपान करवाना चाहिए? या फिर स्तनपान करवाने वाली ऐसी महिला जिसका बूस्टर डोज लेने का समय हो चुका है, क्या उसको ये डोज लेनी चाहिए? ऐसे ही बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं लोगों के दिमाग में. इसके लिए तुलिका ने बात की डॉक्टर कविता बब्बर से.
ब्रेस्ट फीडिंग मदर अगर कोरोना पीड़ित है और वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो बच्चों पर क्या असर होगा?
ब्रेस्ट फीडिंग मदर अपने अगर कोरोना पीड़ित है तो भी वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, बस उनको अपना मास्क
अगर ऐसी मदर को बूस्टर डोज लेना है या प्रिकॉशनरी डोज लेना है तो कितने दिन वेट करना चाहिए?
बूस्टर डोज या कोविड वैक्सीनेशन अगर उसका ड्यू है तो अगर वो पेड भी कर रही है तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. वो जो अपना उनका नॉर्मल शेड्यूल चल रहा है उसी के हिसाब से उसको वैक्सीनेशन लगवाना है, उससे कोई अंतर नहीं आएगा. अगर वो फीड कर भी रहे हैं, अगर वो प्रेग्नेंट भी है, तब भी दोनों ही स्थिति में कोई अंतर नहीं आएगा.
और किस तरीके की सावधानी मदर्स को रखनी चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर? अगर किसी मदर का दूध कम हो जाता है बाई चांस तो उन्हें किस तरीके से बढ़ाना चाहिए और क्या प्रिकॉशन और लेने चाहिए?
ब्रेस्ट फीडिंग एक तरीके से बच्चों के लिए एक अमृत मान ही है, क्योंकि उसके माध्यम से बच्चे को बहुत सारी इम्यूनिटी मिलती है जो कि इमीडिएटली नवजात शिशु में नहीं रहती है. तो ब्रेस्ट फीडिंग करना एक तो बहुत जरूरी है. और हाँ, जैसे कि आप बोल रहे हो बिल्कुल सही बात है कि कई लोग कराना चाहते हैं अपने बेबी को फीड, बट उसकी मात्रा कम रहती है, तो उसको बढ़ाने के लिए बहुत सरल उपाय है जो हमें करने चाहिए. सबसे पहली चीज कि आप पानी का और फ्लूइड का सेवन अच्छा रखना है, क्योंकि ब्रेस्ट जो है मिल्क ही है, वो मिल्क आपके बॉडी से जा रहा है तो वो फ्लूइड निकल रहा है, तो आपको एटलीस्ट 5 से 6 लीटर पानी या फ्रूट का सेवन करना है। सेकंड, आपको सब्जियां और फल अच्छे से खाने अच्छी मात्रा में, स्पेशली जैसे कि पपीता खाने से बोलते हैं दूध भी बढ़ता है, तो पपाया खाना चाहिए। और साथ में घरेलू चीजें हैं जैसे तिल के लड्डू खा सकते हैं और मसूर दाल भी खा सकते हैं, इसकी मात्रा बढ़ती है। और ये सब चीजों के अलावा आपको कैल्शियम रिच खाने खाना है। चिकनी मिल्क में तो कैल्शियम है, तो कैल्शियम रिच सेवन जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स खाने हैं, दालें खानी है, प्रोटीन अच्छा होना चाहिए आपके डाइट में। कई लोग क्या करते हैं, डिलीवरी के बाद अपने घर के बुजुर्ग लोगों के कहने के हिसाब से बिल्कुल सूखा दाल रोटी खाते, क्योंकि उनका मानना होता है कि सीजरन के टांके पक जाएंगे या नॉर्मल डिलीवरी के टांके पक जाएंगे, तो वो टांके पकने के डर के मारे जो है खाना पीना कम दे देते हैं। और हम लोग कितने भी बोलने के बावजूद वो लोग पानी भी कम पीते हैं, सब्जियों का भी सेवन नहीं करते हैं, और ये सब्जी मत खाओ, वो सब्जी मत खाओ, उसको खाने से बच्चे का पेट गड़बड़ाएगा, ये खाने से पेट गड़बड़ाएगा, ये सब बहुत गलत धारणाएं हैं जिस वजह से फिर दूध का क्वांटिटी कम हो जाता है। तो माता को जब वो बच्चे को फीड करा रही है तो उस टाइम पे प्रोटीन, कैल्शियम, फ्लूइड, अच्छा कार्बोहाइड्रेट अच्छे मात्रा में, इनफैक्ट उसका क्वांटिटी प्रेगनेंसी से भी ज्यादा देना होगा, क्योंकि उसको जो पोषण है वो बच्चे को माँ से ही तो जाएगा। अगर हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि पहले 6 महीना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दी जाए, उस दौरान माता का जो आहार है वो उसी क्वांटिटी में देना ही पड़ेगा।
थैंक यू डॉक्टर, आपकी इतनी अच्छी जानकारी हमारे दोस्तों को दी।
ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए अपने खाने पीने में। खान पान से संबंधित बहुत सारी पौष्टिक चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको ऐसी महिलाओं को लेना बहुत ज़रूरी होता है। आइए विस्तार से जानते हैं स्मिता खन्ना राय चौधरी से।
मैं स्मिता खन्ना राय चौधरी, आपकी खाने की डॉक्टर। आज का विषय लिया है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, अगर मैं बोलूं तो ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है माँ और बच्चे को जोड़ने के लिए। माँ शब्द का अर्थ क्या है, ये एक परिपूर्ण शब्द है, ये एक ब्रह्मांड है। तो जो ब्रह्मांड है वो अपने बच्चे के लिए हमेशा हमेशा उज्जवल भविष्य, अच्छी सेहत और बहुत बहुत प्यार दुलार की कामना करती है, है ना। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी दादी नानी, अब तो WHO और यूनिसेफ भी क्या बोलती है, माँ के दूध से बड़ा बच्चे के लिए और कुछ नहीं है। तो माँ के दूध में ऐसा क्या है जो कि बच्चे की सेहत के लिए इतना लाभकारी है। तो सुनिए, जो बच्चे शुरू के कुछ दिनों तक उस दूध को हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, उसमें बहुत तरह के एंटीबायोटिक्स, बहुत तरह के मिनरल्स, बहुत तरह के फैट्स, बहुत तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि बच्चों को बहुत तरह के इन्फेक्शन से बचाते हैं। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनका IQ लेवल ज़्यादा होता है, क्या आपको पता था ये बात। उनका वजन कभी भी नहीं बढ़ता ज्यादा, मतलब वो ओबेसिटी के शिकार नहीं होते, तो उनको डायबिसिटी भी नहीं होती। माँ का दूध बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। ये जो सारी कंपनियां आजकल इन्फेंट फॉर्मूला बेचती हैं वो केवल क्या करती हैं, सारा पैसा अपनी पेट में रखती हैं और हमारी बच्चों की सेहत को हम ध्यान नहीं दे पाते अगर हम वो सब खाते हैं। ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि हमें बहुत तरह के वायरस और बैक्टीरिया से बचाते हैं। आपको पता है ब्रेस्ट मिल्क से एस्थमा नहीं होता और अनेक तरह की एलर्जी भी नहीं होती। आपने अक्सर देखा होगा जो बच्चे फॉर्मूला दूध पीते हैं उनको कान का इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, मगर याद रखिए जो हमेशा ब्रेस्ट मिल्क पीते हैं उनको कान का इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन नहीं होता, उनको कम बीमारियां होती हैं। इसका मतलब माँ बाप को हॉस्पिटल, डॉक्टर, क्लिनिक के चक्कर बहुत कम लगाने पड़ते हैं। यहाँ तक कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनकी स्किन शाइन करती है, इन्फेक्शन नहीं होता। मगर अगर मैं बोलूँगी कि बीमारियाँ से बचाने से ज़्यादा माँ का दूध एक तरह का एक बहुत बड़ा संबंध है, एक रिश्ता है जो हम पूरे जब तक जिंदा रहते हैं हम उसी को याद करते हैं, है ना? मगर आप सोचिए जो औरतें ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, जो स्तनपान कराती हैं अपने बच्चों को, उनसे उनको भी फायदा होता है। क्या क्या फायदा होता है जरा सुने। हम प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज हमारी बॉडी एक्यूमुलेट कर लेती है जो कि ज़रूरी है। जब हम ब्रेस्ट मिल्क पिलाते हैं बच्चों को तब वो कैलोरीज ऑटोमेटिकली कम होती जाती हैं, मतलब हमारे शरीर से फैट अपने आप मैजिक जैसा कम हो जाता है। हमें ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस, राइट, मतलब कि हमारी जो बोन है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहती हैं अगर हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं बच्चों को। तो ये तो विन विन सिचुएशन हुई ना, इससे फ़ायदा बच्चे को भी और माँ को भी। अब कुछ महत्वपूर्ण बातों पे मैं आप लोग का ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा बनता है। पहला होता है गोंद, जिसको बोलते हैं गोंद कतीरा। सुना होगा आपने, दादी नानियाँ क्या करती थी, गोंद के लड्डू बनाती थी। मगर आजकल हमें क्या लगता है उससे हम मोटे हो जाएंगे। तो सुनिए, थोड़ा सा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए। जितना पौष्टिक खाना आप लोग खाएंगे उतना ज़्यादा दूध का, ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन होगा, उतनी जल्दी आपका वेट लॉस होगा और उतना ही फ़ायदा आपके बच्चे के लिए होगा। तो थोड़ा सा सब्र से काम लीजिए, वो पौष्टिक खाना खाइए जो आपके और बच्चे के लिए दोनों के लिए लाभकारी हो। तो पहला मैंने क्या बोला, गोंद कतीरा। गोंद कतीरा हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है, बच्चे के ब्रेन को भी नरिश करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो गोंद के लड्डू खा सकते हैं, उसकी चाय पी सकते हैं, उसकी खीर बना के खा सकते हैं। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो है अजवाइन। अक्सर देखा जाता है क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, बीच रात में उठते हैं, माएँ उनको दूध पिलाती हैं तो उनकी नींद पूरी नहीं होती। जब नींद पूरी नहीं होती तो शरीर में गैस बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसका बहुत ही सरल उपाय है कि अजवाइन पिए, अजवाइन का पानी पिए। दूसरा, अजवाइन का पराठा भी खा सकते हैं, ठीक है। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है आलमंड्स या मामरा, ठीक, बादाम। और हमेशा बादाम को रात को भिगो के खाएं। बादाम एक ऐसा शक्तिशाली और मैं बोलूं बहुत महत्वपूर्ण ड्राई फ्रूट है जिसमें एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं जिससे हमें ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता, ठीक। तो चाहे उनको सोक करके खाएं या बादाम का हलवा खाएं, मुझे तो अभी भी बादाम का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, जब भी आप बनाएं थोड़ा मेरे लिए भी रख दें। चौथी चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, बाजरा। लोग आजकल बाजरा, मिलेट बहुत बड़े बड़े नामों से जाना जाता है, मगर हम देसी लोग बाजरा बचपन से खाते हैं। बाजरा से क्या होता है, हमारी डिलीवरी की जो रिकवरी है बॉडी की वो बहुत जल्दी हो जाती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो है सौंफ। आपको पता है सौंफ में जो तेल होता है वो बहुत ज़्यादा लाभकारी है, उससे हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होती, वो हमें आईबीएस और ट्यूमर से बचाता है। तो हमेशा खाने के बाद सौंफ का सेवन अवश्य करें। तो अभी हमने क्या क्या बात किया, हमने बोला गोंद, गोंद के बाद मैंने बोला आप लोग अजवाइन खाएं, मामड़ा खाएं, बाजरा, सौंफ और बहुत ऐसी चीज़ें देसी नुस्खे हैं जिससे हम ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ा सकते हैं, जो कि बच्चे के लिए भी लाभदायक है और माँ के लिए भी। दूसरी चीज़ है तिल। तिल में क्या है? तिल में एसेंशियल फैटी एसिड है। पहला क्या होता है, उससे हमारा माइंड को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारी स्पाइन को और हमारी बोन्स को। कभी कभी आप देखिएगा प्रेगनेंसी के बाद, मतलब लैक्टेशन के टाइम पे बहुत क्या होता है, हमारे स्टबन फैट हो जाता है, हमारा ब्लड ग्लूकोज रेगुलेट नहीं होता। तो उसका सरल उपाय क्या है, तिल के लड्डू, तिल की चटनी और तिल का तेल, राइट। और एक और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है मेथी, जिससे ये समझ लीजिए ये एक लैक्टेशन की दवाई है। इससे हम रिजुविनेट कर सकते हैं, हम रेगुलेट कर सकते हैं अपने ब्लड शुगर को और काफ़ी हद तक हम मिल्क प्रोडक्शन को भी बढ़ा सकते हैं, है ना, बहुत आसान चीज़। तो मैं दोबारा एक बार आपको याद दिलाऊंगी हम क्या क्या खा सकते हैं, मेथी, तिल और क्या याद आया, बाजरा, सौंफ, मामरा, अजवाइन, गोंद और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है कोकोनट, नारियल। नारियल की बर्फी याद है आपको? नारियल क्या करता है, नारियल बच्चे को और माँ को दोनों को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है ना, बहुत लाभकारी चीज़। तो इसीलिए मैं सबसे विनती करती हूँ, शुरू के 6 महीने स्तनपान बच्चे को ज़रूर कराएं, ताकि वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। एक चीज़ मैं और बोलना चाहती हूँ, जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तब वो एक ऐसा बॉन्ड, ऐसा संबंध बच्चे के साथ बना लेती है, वो जीवन भर उसको एक हेल्दी माइंड की तरफ और हेल्दी बॉडी की तरफ और हेल्दी फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो कुछ मैंने आपको बोला। तो मैं आज की हमारी चर्चा एक छोटी सी शायरी से एंड करना चाहती हूँ। लफ्ज़ अलग हैं, जज्बात वही है, माँ कहूँ या दुनिया बात वही है।
बहुत सारी जानकारी आज के स्वास्थ्य संकल्प कार्यक्रम में हमने आपको दी। अगले अंक में हम फिर आएंगे बहुत सारी जानकारियाँ लेकर। अगले अंक में हम फिर आएंगे बहुत सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार। यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से अरपार रेडियो की प्रस्तुति स्वास्थ्य संकल्प।
जन जन के साथ रहता फिर आए खुशहाली।
सुनिए हर शुक्रवार 5:30 शाम को और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 10:00।
भारत मुस्कुराए, छत्तीसगढ़ मुस्कुराए।